पर्थ में इन्वेजन डे प्रोटेस्ट के दौरान कथित तौर पर बम फेंकने के आरोप में एक व्यक्ति पर आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया है। 31 वर्षीय इस व्यक्ति पर 26 जनवरी को इंडिजिनस लोगों, परिवारों और समर्थकों की 2500 लोगों की भीड़ पर एक एक्सप्लोसिव डिवाइस फेंकने का आरोप है जो फट नहीं पाई। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर रॉजर कुक ने बताया कि इस व्यक्ति पर टेररिस्ट एक्ट करने का आरोप लगाया गया है और ये राज्य में इस तरह का पहला मामला है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रथम राष्ट्र लोगों पर कोई भी हमला सभी निवासियों पर हमला माना जाना चाहिए। इस व्यक्ति पर पहले भी एक्सप्लोसिव बनाने या रखने और हानि पहुंचाने के इरादे से कार्य करने के आरोप लगे थे। न्यू साउथ वेल्स के कोरोनर यानी मृत्यु परीक्षक ने अप्रैल 2024 में बॉन्डाई वेस्टफील्ड जंक्शन में 6 लोगों की घातक चाकूबाजी की घटना को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर जिसकी पहचान एक कोड नेम से की गई, इस तरह की घटना के दौरान अकेले सीसीटीवी की निगरानी करने और तुरंत कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं था। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि हथियारबंद व्यक्ति को सेंटर में देखने के बाद वेस्टफील्ड बॉन्डाई जंक्शन की तरफ से अलर्ट्स और अलार्म एक्टिवेट करने में देरी हुई। पैरामेडिक्स और मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों की सराहना की गई। क्रोनर ने पाया कि हालांकि अधिकारियों ने अबव एंड बियॉन्ड यानी अपने कर्तव्य से आगे बढ़कर काम किया, इसके बावजूद न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने अस्थायी रूप से एम्बुलेंस सेवा से महत्वपूर्ण जानकारी रोक रखी थी। फेडरल पार्लियामेंट में एक कानून पेश किया गया है जो फर्स्ट नेशंस चिल्ड्रन यानी प्रथम राष्ट्र बच्चों के लिए नेशनल कमिश्नर की स्थायी और स्वतंत्र स्थिति को सुनिश्चित करता है। इस कदम से पिछले साल सू एन हंटर की पहली फुल टाइम नेशनल कमिश्नर के रूप में नियुक्ति को औपचारिक रूप दिया गया है जो एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर युवा लोगों के लिए काम करेंगी। प्रथम राष्ट्र बच्चों के यूथ डिटेंशन में रहने की संभावना अपने गैर इंडिजिनियस साथियों की तुलना में 27 गुना ज़्यादा है और आउट ऑफ होम केयर में रहने की संभावना 10 गुना ज़्यादा। सिडनी में एक व्यक्ति की अदालत में पेश होने की उम्मीद है जिस पर कथित तौर पर एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष यानी फॉरेन हेड ऑफ स्टेट और इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड पर्सन को ऑनलाइन धमकी देने का आरोप है। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने पिछले महीने जांच शुरू की थी जब सोशल मीडिया पर धमकी देने की रिपोर्ट मिली। 19 वर्षीय इस व्यक्ति पर कैरेज सर्विस का इस्तेमाल कर हत्या की धमकी देने का आरोप है और दोषी पाए जाने पर उसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। उसे जमानत नहीं दी गई है। एक नई रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया से कहा गया है कि वो ताइवान के साथ अपने कूटनीतिक और सुरक्षा संबंध मजबूत करे, भले ही इससे चाइना की सरकार नाराज हो सकती है। यह रणनीतिक चेतावनी उस समय आई है जब चाइना सैन्य दबाव बढ़ा रहा है और लोकतांत्रिक रूप से शासित इस द्वीप के खिलाफ तथाकथित ग्रे जोन ऑपरेशंस चला रहा है। यूनाइटेड स्टेट स्टडीज सेंटर की रिपोर्ट के सहलेखक और रक्षा विशेषज्ञ पीटर डीन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान रणनीति विश्वास को कमजोर करती है और लंबे समय के नीति लक्ष्यों को प्रभावित करती है। उनका कहना है कि यदि ऑस्ट्रेलिया ताइवान स्ट्रेट में वर्तमान स्थिति को बनाए रखने और युद्ध को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है तो उसे ताइवान का समर्थन करने के लिए और कदम उठाने चाहिए, खासकर जब वो अभूतपूर्व ग्रे जोन ऑपरेशंस और आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। और अब खबर भारत से। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की टीम को 7 विकेट से हराकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप्स में सबसे बड़ा लक्ष्य का पीछा करते हुए 41 ओवर और एक बॉल में 311 रन बनाए। एरन जॉर्ज ने शतक लगाया जबकि वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष मात्रे ने अर्धशतक जड़े। अब फाइनल में टीम इंडिया का सामना शुक्रवार 6 फरवरी को इंग्लैंड से होगा। ये था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ।
हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, टीवी चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।